नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी अभी अरमता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के प्रभास पाटन में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर बोलते हुए नागरिकों से एकजुट रहने और देश को बांटने की साजिश रचने वाले सभी ताकतों को हराने का आह्वान किया। बीजेपी के सीनियर नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए तिरुवनंतपुरम में मिशन 2026 लॉन्च किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति एनक्लेव में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में फिट इंडिया संदेश ऑन साइकिल के 56वें एडिशन में हिस्सा लिया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने फ्रांस का अपना दौरा पूरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की और अपने समकक्ष जीन नोएल बैरोट के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। परीक्षा पे चर्चा 2026 में 4 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए, जो पिछले साल के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से ज्यादा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विभाजनकारी तत्वों को परास्त करने के लिए हमें एकजुट रहने की जरूरत है। आज गुजरात में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का विरोध किया था, वे अब भी भारत में सक्रिय हैं। श्री मोदी ने यह भी कहा कि ये ताकतें भारत के खिलाफ साजिश रच रही हैं और इसलिए देशवासियों को सतर्क रहना होगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति एनक्लेव में पुष्पांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि श्री शास्त्री दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने अपनी सरलता, सत्यनिष्ठता और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण की मिसाल पेश की। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि उनका दिया नारा जय जवान जय किसान कई पीढ़ियों से देश के सैनिकों और किसानों के प्रति गहरे सम्मान का प्रतीक बना हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि निस्वार्थ सेवा, मानवता और राष्ट्रीय एकता के शास्त्री जी के आदर्श देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जैन संत श्रीमद विजय रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज का ज्ञान महज खिताबी नहीं है, बल्कि वो उनके जीवन से भी परिलक्षित होता है। श्री मोदी ने श्रीमद सुरेश्वर जी महाराज की 500वीं किताब के विमोचन पर अपने वीडियो संदेश में कहा कि उनका व्यक्तित्व आत्मसंयम, सादगी और स्पष्टता का अद्भुत संगम है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी किताबें मनुष्य की सभी समस्याओं का सरल और आध्यात्मिक समाधान देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जब दुनिया विभाजन और संघर्ष के दौर से गुजर रही है, ऐसे में प्रेम नु विश्व, विश्व नु प्रेम का मंत्र हम सबको अपनाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने नवकार महामंत्र दिवस के लिए 9 संकल्पों की चर्चा की। इनमें जल संरक्षण, एक पेड़ माँ के नाम, मिशन स्वच्छता, लोकल के लिए वोकल, प्राकृतिक खेती, स्वस्थ जीवन शैली और गरीबों की मदद करना शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने आज केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मिशन 2026 की शुरुआत की। उदय पैलेस कन्वेंशन सेंटर में स्थानीय निकायों के लिए निर्वाचित भाजपा सदस्यों से उन्होंने कहा कि विकसित केरल के लिए राज्य में भाजपा सरकार जरूरी है। श्री शाह ने कहा कि विकसित भारत का रास्ता विकसित केरल से होकर गुजरता है। सबरीमला स्वर्ण विवाद मामले में श्री शाह ने कहा कि लोग 2 मंत्रियों को दोषी मानते हैं और इसलिए वे निष्पक्ष जांच नहीं करा सकते। श्री शाह ने कहा कि इस मामले को लेकर पूरा देश चिंतित है, क्योंकि जो लोग सबरीमला की संपत्ति नहीं बचा सके, वे हमारी आस्था भी नहीं बचा सकते। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक संतुलित विकास मॉडल पेश किया है और देश के बुनियादी ढांचे को विश्व स्तरीय का बनाया गया है। उन्होंने कहा कि केरल को भी दूसरे देशों से भेजे जाने वाले धन पर निर्भर रहने के बजाय व्यापक विकास शुरू करना चाहिए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में 56वें फिट इंडिया संदेश ऑन साइकिल में भाग लिया। इसमें देशभर से आए युवा नेताओं ने भी भागीदारी की। ये युवा नेता विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में भाग लेने के लिए दिल्ली आए हुए हैं। इनमें टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस और बैडमिंटन खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद भी शामिल है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि साइकिल चलाना संतुलन सिखाता है और नेतृत्व में संतुलन की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि साइकिल चलाकर युवा धैर्य रखना, गति धीमी करना और बढ़ाना सीख सकते हैं। श्री मांडविया ने कहा कि पिछले साल जब ये पहल शुरू की गई थी, तब पूरे भारत में पूरे भारत में 240 स्थानों पर साइकिलिंग कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। आज 15,000 से अधिक स्थानों पर संदेश ऑन साइकिल के माध्यम से फिटनेस का संदेश दिया जा रहा है। इस वर्ष प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए अब तक 4 करोड़ से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं। यह आंकड़ा पिछले वर्ष 3,56,00,000 के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को पार कर चुका है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि ये पहल वार्षिक संवाद कार्यक्रम से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के लिए परीक्षा का तनाव दूर करने का राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन चुका है। शिक्षा मंत्री ने विद्यार्थियों से कार्यक्रम में भाग लेकर प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन का लाभ उठाने को कहा। इस वर्ष के लिए पंजीकरण 1 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुका है। MyGOV पोर्टल पर पंजीकरण कराया जा सकता है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार भाग लेने वाले विद्यार्थियों की भारी संख्या कार्यक्रम की बढ़ती लोकप्रियता तथा परीक्षा का तनाव दूर करने और शिक्षा के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने में इसकी कारगर भूमिका का प्रमाण है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन करता है। कार्यक्रम में प्रतिभागियों को पढ़ाई लिखाई के दौरान मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास के बारे में प्रधानमंत्री से सीधे बातचीत करने का अवसर मिलता है। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के पिछोर में इंडिया पोस्ट की स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 सेवाओं की घोषणा की है। ये सेवाएं क्रमशः 24 घंटे और 48 घंटे के भीतर डाक और दस्तावेजों की सुरक्षित और समयबद्ध डिलीवरी सुनिश्चित करेगी। ये घोषणा डाक सेवाओं के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर श्री सिंधिया ने कहा कि इन सेवाओं से समयबद्ध, विश्वसनीय और त्वरित डिलीवरी का एक नया मानक स्थापित होगा। इस अवसर पर उन्होंने 2,00,000 की लागत से पुनर्निर्मित पिछोर सब पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया तथा 1,11,00,000 की लागत से बनने वाले नए सब ऑफिस भवन का शिलान्यास भी किया। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से हो रही तस्करी को देखते हुए सुरक्षा बलों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर सतर्कता बढ़ा दी है। इसका उद्देश्य छुट्टियों के मौसम में घुसपैठ या संघर्ष विराम के उल्लंघन की कोशिश को रोकना है। गुरेज, उरी, करना और तंगधार सेक्टर सहित प्रमुख सीमावर्ती क्षेत्रों और जम्मू के महत्वपूर्ण इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। सीमा सुरक्षा बल के जवान लगातार गश्त और अन्य एहतियाती उपाय कर रहे हैं। इस बीच सीमा सुरक्षा बल ने सांबा जिले में सीमा के पास पाकिस्तानी ड्रोन से गिराए गए हथियारों और गोला बारूद का जखीरा बरामद किया है। रिगल फॉरवर्ड इलाके में नियमित निगरानी के दौरान मिले पैकेट में 2 पिस्तौल, 3 मैगजीन, 16 राउंड गोला बारूद और 1 ग्रेनेड था। खेल मंत्री मानसुख मांडविया ने ब्राजील के पूर्व फुटबॉलर गिल्बर्टो दा सिल्वा के साथ आज फीफा विश्व कप 2026 ट्रॉफी का अनावरण किया। इसके साथ ही ट्रॉफी का भारत का 3 दिन का दौरा शुरू हुआ। अनावरण समारोह के साथ ही इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी की देश भर की यात्रा का शुभारंभ हुआ, जिससे फुटबॉल प्रशंसकों को इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को करीब से देखने का अवसर मिलेगा। फीफा विश्व कप 2026 ट्रॉफी 2 दिनों तक दिल्ली में रहेगी। इसके बाद ट्रॉफी को 1 दिन के लिए गुवाहाटी ले जाया जाएगा। 3 दिवसीय भारत दौरा फीफा के विश्व कप की पहुंच बनाने और 2026 संस्करण में से पहले फुटबॉल प्रेमी देशों के साथ जुड़ने के प्रयासों को दर्शाता है, जिसकी मेजबानी संयुक्त रूप से अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको करेंगे। फीफा विश्व कप 11 जून को शुरू होने वाला है। फिर से आप सुने, फीफा विश्व कप 11 जून को शुरू होने वाला है। 2026 विश्व कप में एक नया प्रारूप होगा, जिसमें पहली बार 48 टीमें भाग लेगी, जिन्हें 4-4 टीमों के 12 समूहों में विभाजित किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर फ्रांस और लक्जमबर्ग की यात्रा संपन्न कर स्वदेश लौट आए हैं। यह यात्रा यूरोप के साथ भारत के बढ़ते संपर्क को दर्शाती है। विदेश मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि इस यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो और विदेश मंत्री जीन नोअल बैरोट के साथ मुलाकात की। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष को देखते हुए बैठक में नवाचार और प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, स्वास्थ्य, शिक्षा और मोबिलिटी के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, सुरक्षा, अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु और समुद्री सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और वैश्विक घटनाक्रम पर भी विचार विमर्श हुआ। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।